देव को दिया, व्यास देव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को
श्रीमद्भागवत 19 मार्च 2010 टेक्स्ट नंबर 7.11.4 स्पीकर हिज ग्रेस माधवानंद प्रभु
यदि हम परंपरा के सिद्धांत का पूर्णता से पालन करें तो निश्चय ही हम आध्यात्मिक मोक्ष या भक्ति में नित्य लगे रहने से तो सही महत्व देते हैं। इस श्लोक के पहले और एक श्लोक है, भगवान प्रजापते साक्षात आत्मजहा ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप प्रजापति ब्रह्मा की साक्षात पुत्र हैं और आप अपनी तपस्या योग तथा समाधि के कारण ब्रह्मा के समस्त पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। और आज का श्लोक, शांत जीवन तथा दया में आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है और आपसे बढ़कर कोई यह नहीं जानता कि भक्ति किस तरह की जाए या किस प्रकार ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ बना दिया। अतएव आप गुह्य धार्मिक जीवन के समस्त सिद्धांतों के जानने वाले हैं और आपसे बढ़कर उन्हें अन्य कोई नहीं जानता। ओम अज्ञान अतिनिरंजस्य ज्ञानांजनाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य महाविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशादेशकारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च उपासिन्दुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम श्रीमद्भागवतम का 7वें स्कंध के 11वें अध्याय, इसका शीर्षक है पूर्ण समाज अर्थात चातुर्वर्ण। इसका 3रा और 4था श्लोक पढ़ रहे हैं। यहां पर युधिष्ठिर महाराज नारद मुझे उन्हीं की प्रशंसा कर रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवत कथा का सही भगवत कथा सुनने के पहले सही आचरण क्या है, क्योंकि भगवत गीता और भागवतम श्री प्रभुपाद यहां कहते हैं इनमें कोई अंतर नहीं है। गीता भगवान ने स्वयं ने कही और भागवत भक्तों ने इस गीता को किस प्रकार से अपने जीवन में उतारा इसकी कथा है। दोनों का जो परिणाम है अपने जीवन में, जब भी कृष्ण कथा होती है अवसर है हमारे पास, तब आता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस कथा में आते हैं। अगर उस कथा में भगवान श्री कृष्ण नहीं है तो उसका कोई असर हमारे हृदय पे नहीं है। तो भगवान कृष्ण कैसे आते हैं? भगवान स्वयं पद्म पुराण में कहते हैं, नाहम वसाम वैकुंठ, वैकुंठ में नहीं रहता, योगी नाम हृदय शुरू, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। मैं कहां रहता हूं? तत्व स्थानी नारदम यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहां जहां मेरे भक्त मेरा नाम, मेरे गुण और मेरे अलौकिक इस प्रकार की लीलाएं इनका वर्णन करते हैं, वहां वहां मन वैकुंठ में भी बैठा नहीं हूं, योगियों के हृदय में भी बैठा। कृष्ण कथा ये भगवान से अभिन्न है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं वही शब्द लेकर बहुत सारे लोग प्रवचन करते हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक बनाते हैं, बहुत अच्छी पंडाल बनाते हैं, एक मनोहर ऐसा दृश्य तैयार करते हैं, लोगों को भावुक बना देते हैं, लोग रोते हैं, घंटों तक लोग बैठे रहते हैं, फिर भी उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होता। कारण क्या? प्रभुपाद कहते थे इट्स लाइक एन एम्प्टी बुलेट। वैसे हम देखते हैं बंदूक है, लेकिन उसमें जो बुलेट डाली है, जो कारतूस डाला है, उसमें कोई गोलियां नहीं है, छर्रे नहीं है, तो आप जब उसको लगाएंगे किसी के ऊपर तो आवाज वैसे की वैसे आएगी जैसे बंदूक की आवाज आती है, लेकिन आदमी मरेगा नहीं। एम्प्टी बुलेट। उसी प्रकार से भगवत कथा एक कैसे सुननी चाहिए, किससे सुननी चाहिए, वक्ता के गुण है आदि विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर में दिखा रहे हैं कैसे सिखाना सीखना है, गुरु से कैसे सीखना चाहिए। और जब इस प्रकार की कथा में कृष्ण स्वयं अवतरित होते हैं तो उसका परिणाम अलग होता है। दो प्रकार के परिणाम होते हैं। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में जब कथा कह रहे हैं तो शौनकादि मुनि सारे मुनिवर सुत गोस्वामी को जब कहते हैं कि आप कृष्ण के बारे में कुछ कहो, सुत गोस्वामी तो पहले उनको बहुत अभिनंदन करते हैं कि आपने सही प्रश्न पूछे, और इन सही प्रश्नों का जब आप उत्तर सुनेंगे तो आपको क्या होगा मैं पहले से ही बता के रखा हूं क्या होगा। ये कहते हैं यस्यम वै श्रूयमानाय कृष्ण परम पुरुषे भक्तिर उत्पाद्यते पुंसा शोक मोह भयम प्रमाद। दो चीजें होगी, एक तो है आपको हृदय में भगवान की सेवा करने की उत्कंठा जागृत होगी, मैं सेवा करना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि भगवान कथा से अभिन्न है। जैसे हम भगवान की छवि देखते हैं मोहक सुंदर आकर्षक महान सारे गुण उसमें है, तो तुरंत किसी महान व्यक्ति को देखने के बाद क्या होता है, सेवा करनी चाहिए, उनके सानिध्य में आना चाहिए। तो फीलिंग जो हमारे हृदय के अंदर भावना जो है वो चेतना कौन सी जागरूक, मुझे सेवा करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, ये पहला परिणाम। और दूसरा परिणाम क्या है? इस संसार का शोक मोह जो हमें तकलीफ हो रही है, भय लग रहा है इस संसार से, उससे क्या होगा? दो चीजें साथ में होनी चाहिए। जैसे हम सही कथा सुनते हैं भगवान के प्रति आसक्ति, उनकी सेवा करने की इच्छा, और साथ साथ में इस भौतिक संसार का भय, दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए। इसीलिए जब हम कथा का श्रवण करते हैं तो उसको कैसे श्रवण करना चाहिए, किससे श्रवण करना चाहिए, ये ध्यान पूर्वक सुनने की बात है। चार चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए भगवत कथा के समय, अगर सही उसका परिणाम होना है तो चार चीजें साथ में आनी चाहिए। एक तो है सही वक्ता, वक्ता वो होना चाहिए जो कि परंपरा में होता है। वहां पर श्री प्रभुपाद बहुत जोर दे रहे हैं कि श्री नारद मुनि ये परंपरा में है, ब्रह्म मर्म गौड़ीय संविधान कृष्ण आंदोलन जो है ये नारद मुनि से आया होगा। भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु विष्णु के रूप में ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को देखकर सुनकर ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता लिखते हैं, गोविंद महादि पुरुषम ब्रह्म सारे श्लोक पूर्ण देख रहे हैं कृष्ण। उस ज्ञान को अचिंत्य भेदाभेद ऐसा ज्ञान वे अपने पुत्र नारद जी को देते हैं, नारद जी उनके शिष्य व्यासदेव को देते हैं और व्यासदेव उसको लिखित स्वरूप में श्रीमद् भागवत में लिखते हैं। हमारी परंपरा व्यासदेव के बाद कुछ समय के लिए टूट जाती है, भौतिक संसार का नियम है कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हमेशा टूटते रहते हैं, इसलिए भगवान बार बार आते हैं उसको फिर से ठीक करने के लिए, या तो स्वयं आते हैं या किसी अपने भक्त को जो असाधारण अलौकिक ऐसा व्यक्ति है उसमें कोई शक्ति है उस व्यक्ति को भेज देते हैं। जैसे मध्वाचार्य जब आए तो ये ज्ञान लगभग लुप्त सा था, कोई जानता नहीं था कि व्यासदेव ने क्या बोला, लेकिन मध्वाचार्य के पास ऐसी शक्ति थी कि वो बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ से आगे आदि बद्री जहां पर पूर्ण आध्यात्मिक संसार में आध्यात्मिक वातावरण व्यासदेव आज भी विराजमान है वहां पर गए, व्यासदेव ने उनका स्वागत किया और व्यासदेव को उन्होंने अपनी जो कॉमेंट्री है गीता और भगवत के ऊपर वो पढ़ा के दिखाई और व्यासदेव ने उनको आशीर्वाद दिया सही है और फिर उस वाणी को लेकर आके उन्होंने सारे संसार को दिया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे हमारी गुरु परंपरा में व्यासदेव के बाद सीधे कौन आते हैं, मध्वाचार्य, कई हजार साल से जो बीच में चल रहा है, लेकिन ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है, ये पूर्ण शुद्ध शास्त्रीय बातें हैं, क्योंकि शास्त्रों का जो विचार है उसको समझने के लिए हम भौतिक बुद्धि का तर्कवाद उससे समझ नहीं सकते, इसको समझने के लिए शास्त्र और जो भक्त हैं उनका आश्रय लेना बहुत जरूरी है, उनके माध्यम से ही हम सही तरीके से समझ सकते हैं। तो सही वक्ता वो है जो इस गुरु परंपरा में आता है, अगर परंपरा के बिना हम कोई ज्ञान बोल रहे हैं उसका कोई परिणाम नहीं, असल में भगवान स्वयं इसकी निर्भरता करते हैं, क्योंकि ये केवल एक सात्विक मनोरंजन से अधिक नहीं है। अभी हम कथा कहना चाहते हैं, कथा व्यास का नाम लिखते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं, लेकिन हजारों लोग जब आते हैं रोते हैं घर पे जाके क्या करते हैं, फिर से वही चक्र जो भौतिक संसार का चक्र वही करते रहते हैं, कोई उस दिन से ये नहीं सोचता कि आज से मेरा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, मैं आज से गुरु ले लूंगा और उनके लिए मेरा जीवन समर्पित कर दूंगा, ये परिणाम नहीं है। परिणाम क्या है, हाँ बहुत अच्छा था आप भी आ जाइए मैं और एक कथा करवा रहा हूँ, सात्विक मनोरंजन, मनोरंजन तो सब कुछ चाहिए, तो कोई लोगों को ये भी अच्छा है गलत नहीं है, कम से कम डिस्को दांडिया वगैरह ये सब करने से सात्विक मनोरंजन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका सही परिणाम कब आएगा, जब जो वक्ता है वो उस गुरु परंपरा में, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने भक्तों के साथ मस्ती में कीर्तन करते करते जा रहे हैं गंगा के किनारे, वो सोच रहे हैं कि चलो आज हम ये विशारद महेश्वर नाम का एक भक्त है, उसके घर पे जाएंगे। सब लोग भक्त जा रहे हैं, उसी घर के आसपास में देवानंद पंडित नाम के एक महान भागवत कथा प्रवचनकार का घर था, वो प्रवचन कर रहे हैं और बहुत शुद्ध ब्राह्मण है, संस्कृत और भागवत कथा एक कहने में बहुत निपुण है। लेकिन जब उनकी कथा सुनते हैं सब श्रीमान महाप्रभु निमाय पंडित, जोर से चिल्ला कर बोलते हैं, ये कौन मूर्ख व्यक्ति है जो भागवत का पाठ कर रहा है, ये मूर्ख क्या जानता है भागवत क्या है, जोर जोर से बोलते हैं। भागवत कथा इसका केवल एक ही परिणाम है, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम। भागवत कथा और मुझ में कोई अंतर नहीं है, चारों वेद जो है वो एक प्रकार के दही का एक भंडार है और सुखदेव गोस्वामी इस दही को मथ रहे हैं, उसमें से जो मक्खन निकलता है वो श्रीमद् भागवतम है। वैसा श्रीमद् भागवतम का पठन करने का इसको अधिकार क्या है इस मूर्ख में? आज ही जाकर मैं इसका श्रीमद् भागवतम पढ़ूंगा, जोर से सब लोग सोच रहे सही में कर देंगे और भागने लगे उस दिशा में, इन भक्तों ने उनको रोक लिया, नहीं मत जाइए। कुछ दिन के बाद फिर से एक बार देवानंद पंडित के सामने आए, चलते चलते महाप्रभु चल रहे हैं उनके सामने देवानंद पंडित आ रहे हैं। तो अब तो तभी तो ऐसे बात थी कि वो वहां तो कथा कर रहे हैं और ये यहां पर है, तो ये अभी सामने सामने है। तो महाप्रभु को फिर से क्रोध आने लगा, वो कहने लगे देवानंद पंडित तुम क्या समझते हो अपने आप को, भागवत कथा कह सकते हो? भागवत कथा कहने के लिए जो पुण्य चाहिए वो आपके आपके बीच में हमें मात्र भी नहीं है, आप प्रवचन नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत ये मेरी वाणी है और बहुत क्रोध से उनको याद दिलाते हैं कि क्या भागवत जानते हो? आपके बीच में जब एक भक्त जिसका नाम है श्रीवास पंडित बैठा था, आप कथा कह रहे थे और भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनकर जब वो रो रहे थे, तो आपके भक्तों ने आपके सुनने वालों ने उनको उठाकर बाहर फेंक दिया और आपने उसको चुपचाप देख लिया, ये आपका भागवत कथा प्रवचन है? धिक्कार है तुम्हें। देवानंद पंडित कुछ बोल नहीं सकते, उनको भी बहुत शर्म आई और शर्म से वो चले गए। जब तक देवानंद पंडित ने केवल जो कथा जो संस्कृत भाषा में लिखी है उसका आश्रय लिया, अपने पांडित्य के ऊपर ये प्रवचन देना चाहा, तब तक महाप्रभु बहुत क्रोधित थे। लेकिन फिर एक बार कुछ समय के बाद जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था और उनके भक्त पूरे नवद्वीप में पूरे उड़ीसा में प्रचार कर रहे हैं, उस समय संकीर्तन करते समय वक्रेश्वर पंडित नाच रहे थे, बहुत लोग कीर्तन गा रहे थे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे,
और भगवान के नाम को भगवान से अभिन्न जानकर उसके आनंद के लिए वक्रेश्वर पंडित नाच रहे थे। हम लोग कीर्तन में नाचते हैं तो ये नहीं कि हम दिखाए लोगों को कैसे हम नाचते हैं, केवल एक ही चीज के लिए नाचते हैं कि ये जो हरिनाम है वो भगवान श्री कृष्ण है, उनको आनंद देने के लिए हम लोग नाचते हैं। हमारा ये भी इच्छा नहीं कि मैं नाचूंगा तो रूप गोस्वामी ने कहा है कि मेरे हृदय से सारे पाप के पंखे जो है वो उड़ जाएंगे, सही बात है, वो अपने आप उड़ जाते हैं। लेकिन हम सही में नाचते हैं वो हरिनाम को आनंद देने के लिए, इसलिए नाचना तब नहीं होना चाहिए जब बैंजो बजेगा या मृदंग जोर जोर से बजेगा या करताल या वॉम्पर जोर जोर से बजेगा, तभी नहीं नाचते, वो तो केवल हम ध्वनि से नाच रहे हैं, उसमें और डिस्को में क्या फर्क है? डिस्को में भी यही होता है, लाइट्स लगते हैं, ढंग 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 बजते लोग नाचते हैं, सोचते कि क्या हम आनंद ले रहे हैं, लेकिन वो जानते नहीं है कि किस प्रकार से वो भौतिक जीवन में अपने आप को और लिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन भक्त नाचता है, वो हरिनाम को आनंद लेने के लिए नाचता है, इसलिए कभी कभी करताल नहीं है तो भी नाचता है, मृदंग बराबर नहीं बज रहा है तो भी नाचता है, भगवान के लिए आनंद के लिए नाचता है। ऐसे वक्रेश्वर पंडित बहुत आनंद से नाच रहे हैं केवल हरिनाम के माध्यम से, और जब वे नाच रहे हैं तो इतने लोग देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो नृत्य है वो इतना आनंददायी है। जब कोई भक्त इस प्रकार के भगवत के भगवत प्रेम से नाचता है तो उसका आनंद कोई अलग होता है, उनको कोई स्टेप्स की जरूरत नहीं है, कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, वो केवल हाथ उठाएंगे। जैसे प्रभुपाद, आप देखेंगे आज की वीडियो में प्रभुपाद क्या नाचते थे, केवल ऐसे ऐसे जंपिंग कर देते, ऐसे हाथ ऐसे पैर, इससे ज्यादा कुछ डांस नहीं आता, लेकिन प्रभुपाद ने केवल हाथ उठा देते थे तो लोग छत को लग जाते, ये उनका प्रभाव, क्योंकि इतना मनमोहक दृश्य है कि प्रभुपाद ने हाथ उठा लिया तो लोग पागल हो जाते। ये कृष्ण प्रेम का परिणाम। तो वक्रेश्वर पंडित को देखने के लिए इतने लोग भीड़ लगा के बैठे थे कि लोग उनके ऊपर गिरने वाले थे, तब ये जवान पंडित ने भी देखा, उसका मन भी आकर्षित हो गया, तो वहां जाकर वो क्या कर रहा था, सबको बाजू में रख रहा था ताकि देवानंद पंडित वक्रेश्वर पंडित बहुत अच्छी तरह से नृत्य कर सके। इस प्रकार से नृत्य करते करते वक्रेश्वर पंडित जब गिर गए तो उन्होंने उनको उठा लिया, अपने गोद में रखा, उनको अपने चादर से पंखा किया। तो वैसे क्या तो चैतन्य महाप्रभु परमात्मा के रूप में उनके हृदय में भी वो सब देख रहे हैं। तब जाके जब महाप्रभु फिर से बंगाल आए, नवद्वीप आए, उस समय देवानंद पंडित के हृदय में ये भावना जागृत हुई कि क्षमा करनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, और फिर भगवान क्षमा तो कर ही देते हैं, उनको कृष्ण प्रेम देते हैं। आज भी हम देखेंगे जय श्री श्री राधा जी हरे भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा स्वामी के कोलद्वीप जगह पर बड़े तो मठर्स हैं, तो है देवानंद पंडित, देवानंद पंडित आश्रम आज भी है उनके नाम से बना हुआ। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि वक्ता ऐसे होना चाहिए जिसने इस परंपरा से भक्तों का आश्रय ग्रहण किया, अन्यथा किसी भी व्यक्ति से सुनने से केवल एक सात्विक मनोरंजन है और उसका कोई परिणाम नहीं। और श्रोता कैसे होना चाहिए, हाँ एक वक्ता का और एक लक्षण है कि भले ही वो परंपरा में आया इसलिए ऐसे नहीं हो गया कि अभी वो व्यास बन गया, जब वो व्यासासन पे बैठता है तो ये नहीं सोचता है कि मैं बैठा हूं व्यासासन पे, ये व्यासासन का नाम ही व्यासासन है, ये जगह श्रील व्यासदेव की है, इसको कोई और छीन नहीं सकता, व्यासदेव की जगह है और उन्हीं की रहेगी। और हम क्या करते हैं, हम केवल उनकी आज्ञा से यहां बैठकर एक ही कार्य करते हैं, उनके आनंद के लिए उन्होंने जो कहा है उसको दोहरा, वी आर कॉपीकैट्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि जैसा वैसा कॉपी करते हैं, लोगों को फिर से बता अपने अपने अनुभव के अनुसार। जो बहुपाल लिखते हैं एक तात्पर्य है कि साक्षात्कार मतलब क्या, बहुत सिंपल डेफिनेशन, साक्षात्कार का मतलब है हम आचार्यों से जो सुना है उसके हृदय अपने हृदय में क्या हमने प्राप्त किया, क्योंकि हर व्यक्ति एक ही बात सुनता है लेकिन हर एक हृदय में सेम बात नहीं बनती है, उसका परिणाम अलग अलग होता है, वो जो अनुभूति है वो हमारा साक्षात्कार, उसको हम दोहराते हैं। तो जो कथा करने वाला है प्रवचन का, वो कथा के पहले व्यासदेव पूर्व आचार्य अपने गुरु इनको प्रार्थना करता है कि मैं जो बोलूंगा वो आपके आनंद के लिए होगा, मैं जो बोलूंगा वो दूसरे जो सुनने वाले हैं उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए। कोई भी व्यासदेव जी का जगह पर बैठकर ये नहीं सोचता कि मैं कथा कर रहा हूं, क्योंकि उस मैं को कोई वैल्यू ही नहीं। हमारा केवल एक ही कीमत है कि हम व्यासदेव की वाणी को दिखा सकते, दूसरा कोई कीमत नहीं। अगर कोई सोचता है कि मैंने नया नया कुछ कथा में बताऊंगा, वो कभी सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसे बताऊंगा जो आज तक किसने कहा ही नहीं। लेकिन केवल मूर्खता है। असल में पहली बात तो यह है कि वक्ता को यही सोचना है कि मेरे गुरु से अधिक मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मेरे गुरु ने जो मुझे बताया है वही मैं बताऊंगा, क्योंकि उससे अधिक मैं कुछ बताना चाहता हूं इसका मतलब है मैं वेश्या हूं। श्रीधर स्वामी इन्होंने श्रीमद् भागवत के ऊपर बहुत अच्छी कॉमेंट लिखी है। लेकिन एक बार महान संत आए, सही में महान है, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे कॉमेंट्री लिखी है कि जो श्रीधर स्वामी से बढ़ता है, और महाप्रभु को अंदर से क्रोध आया। भले वो महान भक्त थे, उनके घर जाकर महाप्रभु ने प्रसाद भी पाया था, लेकिन महाप्रभु ने कह दिया जो स्वामी का अनुकरण नहीं करता वो केवल वेश्या। मतलब क्या है कि जो पुराने आचार्यों ने जो चीज बताई है उसी को हमें बताना चाहिए, नई नई कथाएं कहने का जो प्रयास है, क्योंकि इससे क्या होने वाला है जो हम आम कथाओं में देखते हैं। कथाओं में आप जाएंगे, जैसे हम हर साल पंढरपुर जाते हैं, तुकाराम ने पंढरपुर की वारी शुरू की थी, उनके पहले से चालू, लेकिन तुकाराम का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश उस वाणी में है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का ही संदेश है। लेकिन उसमें आज हम प्रवचन सुनेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, केवल मनोरंजन। एक कुछ तो तुकाराम का भजन लेने का, फिर पूरा मनोरंजन करने का, पॉलिटिकल जोक्स, अलग अलग प्रकार के सो कॉल्ड लेसन्स, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता उसको। कोई ये प्रवचन सुनने के बाद ये नहीं सोचता कि मुझे तुकाराम को फॉलो करना चाहिए, वो सोचता आज कितना बहुत आनंद आ गया, तीन चार जोक्स बताए, ऐसे हो गया पॉलिटिक्स, ये कथा का उपयोग नहीं है। तो इसलिए हम वही बात दोहराते हैं सुनी है, और इस विचार से हम व्यासासन में बैठते हैं कि हे भगवान, हे गुरु परंपरा, आपकी वजह से मैं यहां बैठा हूं, आपकी आज्ञा से, मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मैं अब चाहता हूं क्योंकि आपने मुझे बिठाई दिया है तो आप सही वाणी मुझे दो। आई एम बेगिंग। प्रभुपाद वो कविता लिखते हैं जलदूत के ऊपर, वो क्या लिखते हैं कि आपने भक्तिवेदांत नाम दिया है, अब मेरी वाणी को आप ऐसा बनाइए ताकि ये भक्तिवेदांत नाम सार्थक हो जाए, क्योंकि मेरी वाणी मेरे हाथ में नहीं है, आप जैसे बुलवाएंगे वैसे ही मैं बोलूंगा, मैं कठपुतली के समान हूं, आप जैसे मुझे नचाएंगे वैसे मैं नचूंगा। ये मूड है सही वक्त, और श्रोता कैसे होना चाहिए, श्रोता को इसलिए नहीं बैठना चाहिए क्लास में ताकि ये देखे कि चलो ये क्या बोलते हैं, पहले तो शास्त्रों से बोलते हैं कि नहीं, व्हाट इज स्पीकिंग। कभी कभी ऐसा होता है, आजकल कोई कोई स्पेसिफिक मंदिर है जहां पर लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, ऐसे ही बैठे देख के क्या बोलता, देखते आज क्या बोलता है। ये अखाड़ा नहीं है, भगवत कथा। कल इसने ऐसे बोला था, मैंने ऐसे बोला था, शास्त्र में नहीं है, बाद में मैं उसका ध्यान देख लूंगा। कथा में श्रोता इसलिए आता है भगवान से प्रार्थना करके, भगवान आज इस कथा व्यास से मेरे हृदय के लिए आप क्या मैसेज देते हैं, आप क्या देना चाहते हैं मुझे आज, आप मुझे दे दीजिए। भले ही कोई व्यक्ति नया भी होगा तो भी अगर हम सिंसियरली सुन रहे हैं तो उसमें से जरूर ऐसी चीज मिलेगी जो हमारे आज के भक्ति के लिए सफिशियंट है, मिलेगी नहीं जरूर नहीं, लेकिन हमें उस दृष्टि से उस इच्छा से सुनना चाहिए। ये नहीं सुनना चाहिए कि मैं आज कुछ सीख लूंगा, ये बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, इनको बहुत अच्छी कथा याद है, मैं लिख लूंगा और फिर मैं भी दूसरों किसी को बता दूंगा। लर्निंग एक्सपीरियंस ये लर्निंग नहीं है। हम लोग यहाँ पर आए हैं अपने शुद्धिकरण के लिए। हम जब कथा सुन रहे हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी कथा से क्या होने चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए, भक्ति में उत्साह आना चाहिए और इस संसार का नहीं चला जाए। इसलिए मैं इस कथा में बोल रहा हूं ताकि मेरा हृदय का शुद्धिकरण हो, ये श्रोता का दोष है। और श्रोता खास करके गुरु और शिष्य के नाम पर इस प्रकार से सुनता है कि हर शब्द को वो अपना जीवन का ध्येय बना लेता है। भगवद गीता में अनेकों तात्पर्यों में श्री प्रभुपाद बार बार यही बात कहते हैं कि अगर कोई आध्यात्मिक जीवन में यशस्वी होना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, अपने गुरु को पूर्ण प्रसन्नता देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु की वाणी को अपना जीवन सर्वस्व बना लेता है तो ही इज कंसिडर्ड अ सक्सेस। बाद महाप्रभु जब श्रीरंगम में थे तो उनको एक ब्राह्मण हर दिन मिलता था, जो ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ता था, अलग अलग श्लोक उनको बराबर संस्कृत बोलने को नहीं आता था। कभी कभी वो संस्कृत श्लोकों का इस प्रकार से उच्चारण होता उसका गलत अर्थ निकलता था। और जो शास्त्र में पारंगत ऐसे पंडित जब आते थे तो हंसते थे, उनकी निर्भर्सना करते थे। लेकिन महाप्रभु देखते थे कि ये व्यक्ति हर दिन पढ़ता है और होता है, तो उन्होंने एक दिन पूछ लिया कि भाई आप क्यों रो रहे हो, क्या आपको पढ़ने को नहीं आता इसलिए रो रहे हो? तो ऐसी बात नहीं है, मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं हर दिन रंगनाथ के आनंद के लिए एक गीता पढ़ू। और इसीलिए केवल मेरे गुरु ने बोला है, नहीं तो मुझे तो पढ़ने को आता नहीं, मेरे गुरु ने बोला है इसलिए मैं हर दिन ये गीता का पाठ करता हूं। पर ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे कर रहे लेकिन रो क्यों रहे, रोने का कारण क्या है? तो मैं रो रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं हमेशा जब भी गीता हाथ में लेता हूं तो मेरे सामने एक ही चित्र आता है। वो चित्र है कि सारे सृष्टि के ब्रह्मांड के मालिक भगवान श्री कृष्ण, जिनकी सेवा अनंत लक्ष्मियां करती है। एक लक्ष्मी के पीछे सारा संसार पड़ा हुआ है लेकिन अनंत लक्ष्मियां उनकी सेवा करते हैं। ऐसे ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के लिए क्या कर रहे हैं, उनके साथी बन रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। जब ये मैं देखता हूं तो मुझे रहा नहीं है, मैं रोने लगता हूं। महाप्रभु ने तुरंत कहा तुमसे अच्छा और कोई भगवदगीता नहीं पढ़ सकता। भगवदगीता पढ़ने का अगर कोई तरीका है तो आपने जो लिया है वही सही तरीका है। मतलब क्या है, इस नम्र भावना से जब हम सुनते हैं तभी सही परिणाम होता है कि मेरे गुरु ने कहा है इसलिए मैं कर रहा हूं। वही गीता अर्जुन ने सुनी, वही गीता संजय ने सुनी, वही गीता धृतराष्ट्र ने सुनी, सुनी कि नहीं सुनी? परिणाम क्या है, अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। संजय भक्त रूप में इतना प्रसन्न हो गया कि आखिर में बताता है कि जहां जहां कृष्ण है अर्जुन है वहां कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, वहां केवल यश है, कीर्ति है और सारा जो ऐश्वर्य है वहीं पर। धृतराष्ट्र का सुनना क्या हो गया, हाँ अभी गीता गीता नहीं बोलता तो कितना अच्छा होता कि दुर्योधन अपना जीत जाता अपने आप ही, क्योंकि दुर्योधन ने तो अर्जुन ने तो पहले ही बाण और धनुष रख दिया था, ये क्यों गीता बोली गई? देखो सेम गीता लेकिन परिणाम क्या है, क्यों? कोई श्रोता किस इच्छा से सुन रहा, संजय कैसे देख रहा है कि देखो कैसे भगवान श्री कृष्ण है, कैसे अर्जुन है, मेरा कितना भाग्य है कि मैं व्यासदेव की कृपा के कारण ये सब यहाँ बैठकर देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ। ये संजय का परिणाम। अर्जुन का परिणाम क्या है कि उसने सारा मोह सब कुछ त्याग कर आनंद से उत्साह से आप जो बोलेंगे वही हम परिणाम तो सही श्लोक। और फिर सही मूड, हमारा मूड भी सही होना चाहिए। मूड का मतलब हम लोग अंदर क्या सोच रहे हैं, तो बाहर विषय से हम लोग सीधे बैठे हैं सुन रहे हैं ताकि कोई ये नहीं बोले कि हम सो गए हैं और नींद आती तो भी ऐसे ऐसे करते हैं। ये इंटरनली क्या, इंटरनली यही इच्छा है कि मैं आज आया हूँ, भगवान आप जो कहना चाहते हैं मुझे इस व्यक्ति के माध्यम से कह दो। हम ग्रंथ पढ़ते हैं तभी भी ऐसे नहीं कि इसको एक यूनिवर्सिटी की तरह पढ़ना चाहिए, जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे दसवीं कक्षा में नौवीं कक्षा में, पाठांतर कर दिया फिर लिख दिया फिर भूल गए। हम अंदर से हमारे हृदय में क्या हो रहा, क्या भक्ति उत्पन्न हो रही है, क्या भगवान को प्रसन्नता आ रही है, इसलिए। और इसका परिणाम यह है कि हम बाहरी दृष्टि से कैसे बर्ताव करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस कथा को इसलिए सुन रहा है क्योंकि उसका शुद्धिकरण होने वाला है और वो नम्र है, ये जानता है कि मैं बहुत अशुद्ध हूं, तो बहुत उत्कंठा से सुनेगा क्योंकि ये चांस है। मैं यहां बैठे बैठे अपने आप को पवित्र करवाऊं। देखो आप सोचिए कि हम लोग यहाँ एक पूरे घंटे बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम स्नान कर रहे हैं गंगा में। इस गंगा भगवत कथा है, गंगा एक बहुत सुंदर श्लोक है कि गंगा की तरह भगवत कथा बनती है। गंगा तीनों लोक में बैठती है, स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में, पाताल लोक में, अलग अलग नामों से पहचानी जाती है। स्वर्ग लोक में उसको अलकनंदा कहते हैं, यहाँ भागीरथी कहते हैं, और पाताल लोक में भोगवती कहते हैं। लेकिन तीनों जगह में एक ही कार्य करती है, जो जो उसके संपर्क में आएगा उसका शुद्धिकरण। उसी प्रकार से भगवत कथा तीनों लोगों को प्रवृत्त करती है, बोलने वालों को, सुनने वालों को, और आसपास बाय चांस कोई घूम रहे हो उनको। ये उसका परिणाम है, इसलिए उसका एक माहौल रहता है कैसे सुनना चाहिए। बाहरी एटिकेट भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनसे कथा कैसे सुननी चाहिए, क्योंकि उनसे हम सही तरीके से सुनेंगे तब हम पता चलेगा कि भगवत कथा क्या है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जैसे महान आचार्य जिनका बुद्धि की कोई सीमा नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक यंग युवावस्था में ही उन्होंने सारे जो तथाकथित स्मार्त ब्राह्मण थे उनको परास्त कर दिया और वैष्णव सिद्धांत को बिल्कुल ऊपर रख दिया था। लेकिन ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब उनको कहा गया, भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि आपको दीक्षा लेनी चाहिए, तो किससे दीक्षा आप ही दे दो। भक्तिविनोद ठाकुर दे सकते थे लेकिन केवल जो कास्ट गोस्वामी यानी कि जो पिता पुत्र की जो परंपरा है जाति गोस्वामी, इसका खंडन करने के लिए भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा मैं नहीं कभी चल वो दे सकते, लेकिन वो करने से इसका समर्थन हो जाता। इसलिए उन्होंने कहा कि आप गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेंगे। तो गौरकिशोर दास महाराज के पास जब गए तो उनकी स्थिति क्या है, वो पहले ही भक्ति सरस्वती को प्रभु मान गए। गौरकिशोर दास महाराज वो बोल रहे हैं ये तो मेरे प्रभु हैं, क्या अच्छा प्रवचन करते हैं, 4 साल की उम्र से तो एक गीता के ऊपर प्रवचन करते हैं, सारे श्लोक उनके मुखोद्गत हैं, मैं गवार हूं। लेकिन जब उनको बताया गया कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं तो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा कि देखो मैंने एक बार किसी को दीक्षा दी थी लेकिन उस व्यक्ति ने बहुत घिनौने कार्य किए, और मुझे लज्जा आ गई, इसलिए तभी से मैंने ये सोच लिया है कि अभी मैं दीक्षा नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं है, मुझे केवल एक एक बार मुझे एक चांस दे दो, मुझे दीक्षा दे दो। तो ठीक है, कुछ समय के बाद आओ फिर मैं सोच लूंगा। फिर दो तीन महीने के बाद गए, उनकी सेवा करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं देना चाहता, बस इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना। तो उन्होंने कहा नहीं, आप दीक्षा नहीं देंगे तो मेरे जीवन को कोई मतलब नहीं है। बोला ऐसा नहीं, आप तो महान व्यक्ति हैं। फिर बार बार बोलने के बाद एक बार उन्होंने बता दिया कि ठीक है, मैं महाप्रभु से पूछ लूंगा कि आपको दीक्षा देनी है कि नहीं देनी। तो उनको थोड़ा सा सांत्वना लगी, ठीक है कम से कम महाप्रभु को तो पूछने वाले हैं। दो तीन महीने के बाद बोले, क्या पूछा क्या महाप्रभु को? अरे भूल गया, कम से कम पूछो तो सही। फिर दो तीन महीने के बाद गए, बोले पूछा क्या? हाँ पूछा, क्या बताया? उन्होंने बताया दीक्षा मत दो। तो उनको इतना दुख हो गया भक्तिदान सरस्वती, लेकिन उनकी नम्रता ये थी जो रोने लगे, रोकर वो बोलने लगे कि मैं अभी केवल मृत्यु को ही प्राप्त हो सकता हूँ, और कोई मेरे जीवन में आएगा, क्योंकि मैंने आपको स्वीकार कर लिया ऑलरेडी, मैंने आपसे अंदर से दीक्षा ले ली है, आप ही मेरे गुरु हैं। जब इस प्रकार से रोने लगे तभी गौर किशोरदास बाबाजी महाराज ने बोला ठीक है, जाओ स्नान करके आओ, और फिर उधर ही ऑन द स्पॉट दीक्षा दे दिया। इस बात का गौरव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बार बार करते हैं। वे कहते हैं कि मैं ये सोचता था कि वैष्णव सिद्धांत मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक मैंने अपने गुरु से नहीं मिला तब तक मैं ये जाना ही नहीं कि वैष्णव क्या है। असल में मैं जो कुछ आज बोल रहा हूं वो केवल गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और भक्तिविनोद ठाकुर इनका जीवन देख के बोल रहा हूं, उसी से मैं वैष्णव सिद्धांतों को समझ पा रहा हूं। ये मूड है, ये मूड है भगवदगीता का, भगवत कथा का श्रवण करना। जब खास करके हम गुरु के सामने जाते हैं तो ये नहीं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं सारे शास्त्रों को जानता हूँ, बहुत अच्छा कीर्तनकार हूँ, गुरु भी मेरा कभी कभी ओपिनियन पूछ लेते हैं, आई एम इक्वल टू यू, ये विचार बहुत सुसाइडल है, डेंजरस, आध्यात्मिक आत्महत्या करने जैसा है। क्योंकि जब तक हम गुरु को इस प्रकार से देखेंगे हम कभी उन्नति कर नहीं पाएंगे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने जीवन से क्या दिखा रहे हैं, क्या है ग्रेटेस्ट गुरु, वो कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे ये दिखा दिया कि मेरा सारा पांडित्य कुछ काम का नहीं है। उन्होंने चार बार ना क्यों बोला है, वो दिखाना चाहते हैं कि तुम जो कुछ पढ़े हो सोच रहे हो तुमको आता है, दैट इज जीरो विदाउट मर्सी ऑफ श्री गुरु। तो इसलिए कथा सुनने के लिए ये मूड बहुत आवश्यक है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं आज इस कथा से क्या लेने वाला हूँ, मैं बहुत अशुद्ध हूँ, अपवित्र हूँ, ये कथा मुझे पवित्र करने वाली, मेरे हृदय में कोई इच्छा नहीं भगवान की सेवा करने की, ये कथा से मुझे भगवान की भक्ति करने की इच्छा हो। इसीलिए जब खास करके महान संतों के सामने हम आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर क्या करें, पहले उनका गौरव करें, क्योंकि वो गौरव के पात्र हैं। गुरु से मिलने के बाद में तुरंत उनका गौरव होना ही चाहिए, इसलिए हम पहले क्या करते, दंडवत प्रणाम करते दिखाने के लिए कि मैं आपके शरणागत हूं, मेरी कोई योग्यता नहीं आपके साथ। और इस प्रकार के जब मूड में सही में अंदर से केवल बाहरी दृष्टिकोण से नहीं हम सुनते हैं तब उसका सही परिणाम अपन लोगों को, अन्यथा इस कथा के माध्यम से भी हम अहंकारी बनेंगे। लेकिन जब सही मूड है तो हमारे हृदय में तुरंत दो चीजों की जागृति होगी, भगवान की भक्ति के प्रति उत्कंठा और इस संसार का भौतिक भय। इसलिए युधिष्ठिर महाराज पहले ही बता रहे हैं नारायण बना गौरव कर नारद मुनि ने आप क्या हो भगवान के प्रति सदैव आज्ञाकारी विप्रा आप ब्राह्मण में सर्वश्रेष्ठ है आप करुणा है आपके अंदर कितनी करुणा है उन्होंने प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ऑब्लिगेशंस हमें केवल बोलने का जरूरत नहीं है उसको सहमे महसूस करना चाहिए साधवा शांत तो कोई सोचेगा इसकी जरूरत क्या है तो सब जानते ही है हाँ ऐसे हम लोग कभी कभी सोचते हैं तो इसकी जरूरत क्या है जैसे किसी ने प्रवचन दिया है एक्चुअली उसको थैंक बोलना चाहिए धन्यवाद बोलना ये मत सोचो अरे उसको मैं धन्यवाद बोलूंगा उसको बोलूंगा कि आपने कितना अच्छा क्लास दिया तो उसको अहंकार हो जाएगा फिर वो पतित हो जाएगा ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है भगवान कहते हैं कि इनका गौरव करो ये कथाकार है करना ही चाहिए अभी सोचते ना ऐसे लेकिन गलत है सही हृदय से की हुई प्रशंसा जो है प्रशंसा नहीं गौरव है वो गौरव जो सुनने वाला व्यक्ति है उसके हृदय में भी सही परिणाम करेगा क्या परिणाम करेगा जो सुनने वाला उसने ये तो मेरी योग्यता नहीं है केवल मूर्ख व्यक्ति सोचे हाँ मैंने कितना अच्छा क्लास दिया लेकिन जो सही वक्ता है वो यही सोचता है कि क्या आज भगवान की कृपा होगी कि कुछ शब्द उन्होंने मुझसे बुलवाए जिनसे इनको प्रसन्नता हुई भगवान धन्यवाद मेरी कोई योग्यता नहीं है लेकिन ये लोग कह रहे हैं इसलिए मैं उनके लिए कुछ प्रवचन तो इस प्रकार से युधिष्ठिर जैसे महाजनों से हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से एक कथाकार को संबोधित किया जाता है कौन सा एटिकेट होना चाहिए कैसे बैठना चाहिए कैसे सुनना चाहिए किस मूड में कथाकार श्रवण करना चाहिए इसी इन्हीं चीजों को हम इस श्लोक से सुन सकते हैं हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम
ये चारों चीजें जो मैंने बताई वक्ता को होना चाहिए श्रोता को होना चाहिए क्या मूड होना चाहिए क्या एटिकेट होना चाहिए इसमें मैं कहीं पर फिट नहीं बनता लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है तो आप लोगों ने बहुत शांति का भी सुना इसके बहुत बहुत धन्यवाद किसी को कोई प्रश्न है नहीं जरूर बताना चाहिए ऐसा तो हम तो ये मैं क्या कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ जो सुना है वही बता रहा हूँ बताना चाहिए लेकिन वो हमारा मूड नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ नोट्स लिखूंगा सुनूंगा अच्छी अच्छी कहानी बताऊंगा ताकि लोग दूसरे लोग इम्प्रेस हो जाए कि मुझे कितना वो गलत है वो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये हम अपने शुद्धिकरण के लिए कर लें और जो बताएंगे वो भी अपने शुद्धिकरण के लिए ही बताएंगे उसमें ये मूड नहीं है कि मैं इतना अधिक जानता हूँ मैं कौन सी नई नई स्टोरीज बता सकता हूँ ठीक है यस जैसे आप उतार रहे हैं आपको बताया गुरु ने चार नियमों का पालन करो सोलह माला जप करो गुरु की अवज्ञा मत करो वही तो आप कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हैं वैसे हम भी करेंगे क्लास को जब तक हम लोग ये देख रहे हैं कि मैं माधवानंद दास हूँ मैं शुद्ध सेवक दास हूँ और मैं क्लास देने वाला हूँ तब तक गड़बड़ क्योंकि जब तक मैं है अंदर तो क्लास बराबर नहीं होगा हम इसलिए क्लास देते हैं क्योंकि भगवान भक्तों ने आज्ञा की है ये मेरी सेवा है, मुझे आज सेवा का मौका प्रदान किया गया है, तो मैं क्लास दूँ। अगर हम क्लास को सेवा के दृष्टि से देखते हैं तो तुरंत हमारी अनुभूति में भी फर्क पड़ता है। मैं तो बहुत टेंशन आता क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए। हम बड़े पंडित होंगे जो भी होंगे, लेकिन जो साक्षात्कार है वो हमारे पास है नहीं। लेकिन जब सेवा के दृष्टि से हम देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर जा रहे हैं सुबह सुबह, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, तो क्या हमारे हृदय में वैसे हो रहा है? क्या हम गोविंद को भज रहे हैं? हमारे हृदय में कुछ नहीं हो रहा है, हम सोच रहे हैं कभी यहां से भी तीर्थ प्रसाद लेके वहां पर चला रहे हैं। हम खाली उसमें एक्टिविटी में से जाते हैं। हम इसलिए गा रहे हैं और उसका परिणाम भी इसलिए आ रहा है क्योंकि ब्रह्मा जी ने इसको गाया था, ब्रह्मा जी ने गाया था तो ब्रह्मा जी गा रहे थे, इसलिए मैं उनका मैं दोहरा रहा हूं उसी से, जैसे कालिया ने किया। जो नागपत्नी है उन्होंने स्तुति की भगवान की, अभी कालिया तो जानता नहीं था स्तुति कैसे करनी चाहिए। काले के हृदय में तो बहुत क्रोध द्वेष सब कुछ भरा होता है, उसने क्या किया, बहुत इंटेलिजेंट बात जो हम कर रहे हैं, जो जो अपनी पत्नी ने बताया उसको एज इट इज रिपीट कर दिया। ग्रेट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ने जो बोला उसको रिपीट कर। तो क्या हमारी सेवा है कि जो ब्रह्मा जी ने बताया था, प्रभुपाद ने बताया था, हमारे गुरु बता रहे हैं, और अधिक वैष्णव जिनसे हम सुनते हैं अपने साक्षात्कार के जैसे बताते हैं, उसको हम श्रोताओं के लिए किस प्रकार से प्रस्तुत करें, नम्रता से, जितनी नम्रता हो सके उस नम्रता से, एक भिक्षुक के मान, भिक्षुक जिस प्रकार से बिल्कुल नम्र होता है, भिक्षुक ये नहीं सोचता कि मेरे पास बहुत कुछ धन है, उसको कुछ नहीं होता, तो केवल वो प्रार्थना करते मेरे कुछ दे दो और जो मिला उससे वो सबको बांट दो, देन द राइट मूड का फिर सही असर भी आया। संसार से भी कुछ लेना चाहिए ताकि मैं और अधिक प्रचार कर सकता हूँ। तो युक्त वैराग्य का मतलब है हम जो कुछ भी आता है उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, एक दृष्टि से वो सही है, लेकिन दूसरी दृष्टि से जो प्रभुपाद ने लिखा है या आचार्यों ने लिखा है उसके बाहर कुछ है ये सोचना ही गलत है। असल में जो संसार में ज्ञान है आज भी, इसको एक ब्रॉड ऐसा क्लासिफिकेशन उसका बना दिया है, सबको व्यास उच्चिष्ट कहा जाता है। कोई भी पंडित कहां का भी हो अगर कुछ बात करता है तो क्या है, व्यास उच्चिष्ट है, मतलब व्यास ने पहले ही कर दिया है उसका, खाली ये उच्चिष्ट कहा रहा है। अगर कोई सोचता है मैं कुछ नया बता रहा हूं, गलत है, क्योंकि व्यासदेव ने सब कुछ दे दिया, व्यासदेव इज कृष्ण। अभी कृष्ण के शक्ति के समझ के बाहर कुछ है क्या जो आप ले सकते हैं? तो ये जो विचार है ये गलत है, बाहर से कुछ लेना जरूरत नहीं है। हम अगर इसी वाणी को बराबर से दोहराएंगे, दिस मोर देन सफिशिएंट। असल में भक्त बहुत प्रामाणिक होता है, कभी कभी उसको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता, तो कोई पॉइंट बराबर समझता नहीं तो तुरंत बता देता कि मैं समझ नहीं सकता, मैं अपने दूसरे भक्तों को पूछ के आपको बताऊंगा, इसमें कोई अयोग्यता नहीं है। जो व्यक्ति ये बात सुनेगा उसको भी प्रसन्नता होगी कि ये बात, ये व्यक्ति विश्वास रखने लायक व्यक्ति है। क्यों विश्वास रखने लायक है? क्योंकि खुद की बात नहीं बता। प्रभुपाद यशस्वी क्यों थे? हमेशा वो ये कहते रहे कि मैं एक प्यून हूं, आई एम अ प्यून, मैं केवल मेरे भक्तिदान सरस्वती मेरे गुरु महाराज हैं, उनका एक प्यून हूं, जो उन्होंने बताया है उसी को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, कुछ यही मेरी योग्यता, आई एम ट्राइंग टू बिकम अ गुड प्यून।
ठीक है,
अल्हम्दुलिल्लाह भगवान ही सब कुछ, लेकिन फिर भी इसमें ऐसा कि सार्वभौम भट्टाचार्य का मूड अलग था। अब ये अंदर की बात, मूड क्या है? अगर मूड ये है कि मैं तुमसे कुछ बढ़कर करने वाला हूँ, दैट इज श्रीधर स्वामी से बढ़कर मैं कथा बता रहा हूँ। और जो सार्वभौम भट्टाचार्य क्या कर रहे हैं कि मैंने जो आपसे सुना है वो मुझे इतना अच्छा लगा है कि उसको मैं इस श्लोक में डाल रहा हूँ। आप समझ रहे? चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने इस भक्ति का गौरव ऐसे सुना कि उनको इतना आनंद आ कि ये मुक्ति मुक्ति सब बहुत भयंकर है, उसको त्याग देना चाहिए। उनको लगा बहुत भयंकर है, क्यों? उन्होंने महाप्रभु से, तो वो सोच रहे हैं कि इसको मैं अभी बदल दूँ, मुक्ति निकाल दूँ और भक्ति रखूँ। उसको अंदर से उनके विश्वास के कारण आनंद होगा कि देखो इसका विश्वास, कल तक कठोर मायावादी था, आज देखो कितना पिघला हुआ भक्त बन गया। He was happy. ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद।
Thank you.